व्यक्ति की चिंता करता है। भाई कौन था? हमारे चित्त को हरण कर लेना ये स्वाभाविक सहज बात नहीं है। कौन था? यदि वो नहीं आया दर्शनीय, अब तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। भोर में 4 बजे उसको एक स्वप्न सा हुआ, स्वप्न भी नहीं, देख रहा जैसे वही बालक आया। कहे बाबा दूध तो हम उस समय कहा था तो नहीं पिया, पीछे से पिया। मैं बहुत दिनों से यहीं पर भूखा पड़ा हूँ, हजारों वर्ष हो गए। मुसलमान के भय से हमारे भक्तों ने हमको यही जमीन में छोड़ दिया, तुम उसको निकाल करके हमें खिलाओ पिलाओ, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। कभी माधवेंद्रपुरी आशी करीब ऐसे कब आएगा माधव? उन्हीं माधवपुरी के ऊपर जति सन्यासी थे, इसलिए जति पूरा है गोवर्धन में। इसके बाद उन्होंने गांव वालों को लिया, सवेरा हुआ और उसको खोदा, उससे निकाला और तब उन्हीं का नाम पड़ा श्रीनाथ जी गोपाल जी। बहुत दिनों तक वहां पर सेवा हुई। एक दिन उन्होंने स्वप्न दिया, हमको खिलाया पिलाया खूब, स्नान भी कराया, हमारा ये जो पाप है वो नहीं गया। तुम जाओ जगन्नाथपुरी, वहां से सुंदर सुंदर मलयगिरी का चंदन मिलता है, अभी भी मिलता है शुद्ध, आदमी पहचान नहीं पाते। वहां से ले आओ और रगड़ करके हमको चारों तरफ में चंदन चढ़ाओ, हमारी शीतलता हो जाएगी। चले चलते चलते पैदल गोवर्धन से पैदल गए, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। बीच में एक स्थान आया रेमुना जिसको कहते हैं, बालेश्वर के पास में है। वही रेमुना में शाम को एक जगह ठहर गए। वहां पर एक छोटा सा मंदिर था जिसका गोपीनाथ उसका नाम है। गोपीनाथ जी को बड़ी सुंदर सुंदर भोग लगते हैं, खीर का दूध का औट करके एकदम गाढ़ा बना दिया जाता, बहुत अद्भुत अलबेला भारतवर्ष में अपने तरह का ये उसका भोग लगा। 7 कुंडियां की 12 कुंडी 12 मट्टी के बर्तन में रख करके उनको भोग दिया, इसके साथ साथ और से चीज होगी। तो वो भोग लग गया, आरती दर्शन करने के लिए भी गए, आरती दर्शन किया, भोग लगा, इसके बाद में ये चले आए। और वहाँ से मंदिर से बाहर में एक गांव छोटा सा है वही पास में, उसी जगह में एक बाजार पर, बाजार में वो जो बाजार कुछ चीज़ बेचते हैं वो बांस के वो बना देते हैं कुछ ऊंचा मचान जैसा, उस पर बैठते हैं आदमी या उस पर सामान लगाते हैं, बस उसी जगह बैठ करके अपना भजन कर रहे। 12 बजे रात हुई, जब 12 बज गया तो ठाकुर जी का पुजारी पुकार रहा है, माधव कोई है? माधव, माधव नाम का कोई भक्त यहाँ है? उनको माधव माधव पुकारने। इन्होंने भाई माधव जी को किस लिए बुला रहा है? ठाकुर जी बुला रहे हैं माधव जी को। इन्होंने कहा जैसे हमको बुला रहे हैं, माधव तो मेरा नाम है तो आपको ठाकुर जी बुला रहे हैं। वो जो भोग लगा उस समय में ये थे और बड़ी उसकी सुगंध आ रही थी, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। इन्होंने सोचा कि हम अपने गोपाल जी के लिए ऐसा ही भोग लगाएंगे, ये कैसा टेस्टफुल है या क्या क्या है। अब वो वहाँ से तो चले आए और वहाँ पर बैठे हुए थे, सोचा जी ये तो बहुत गलत काम है, किया अपने जीवा के लालसा से हमने ये ऐसा कह दिया। किंतु ठाकुर जी ने सुन लिया, इस भक्त को कुछ चखाना चाहिए इसको, और ये ऐसा ही जाकर के भोग लगाए और हमको वहाँ पर मिल जाएगा। वो गोपाल जी ये गोपाल जी एक ही हैं, हम तो दूसरे रूप में देखते हैं। बस ठाकुर जी ने उनको बुलाया, जो देखो अच्छा, तो उस समय में उन लोगों ने सब जितने पात्र थे उसको सबको हटा दिया, लिप पोत करके सब ठीक ठाक कर करके ठाकुर जी को साइन दे दिया। जब साइन दे दिया तो 12 बजे जब रात हुई, ठाकुर जी ने पुजारी से कहा जे देखो वो हमारा भक्त चाह रहा था जे हमारा प्रसाद थोड़ा सा मिले, तो उसके लिए तुम लोग तो ले गया किंतु भूल में एक रख गया, हमने अपने कपड़े में ढक करके रख दिया है नीचे चादर के नीचे, इसलिए जा करके देखो वहाँ पर एक रखा है, ये ले करके और उसका माधव माधव नाम पुकारना आए तो उसको ये दे दो। देकर के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पुजारी जाकर के आवाज लगाने लगा, आवाज लगाने पर उन्होंने कहा माधवपुर कौन है, तब मैं हूँ। चलिए चलिए आपको ठाकुर जी बुला रहे हैं। ये वहाँ ले जा करके मंदिर से वो निकाल करके और उनको बर्तन दे दिया, दे करके और वो चला गया बंद करके ठाकुर जी को शयन देकर। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई। सवेरे पुजारी सबसे कहेगा और कहने पर सब लोग आएंगे जी तो सिद्ध महात्मा है और आकर के बड़ी प्रशंसा करेंगे और हमसे कहेंगे जैसे पुत्र दो, धन दो, दौलत दो, ये तुम्हारी ठाकुर जी ये ऐसी बात सुनता है तो जरूर तुम ऐसा कर सकता है, बस हमको चारों तरफ से घेर लेंगे, हमारा भजन नष्ट हो जाएगा। भक्ति राज्य में प्रतिष्ठा सबसे बड़ी भारी गड़बड़ की चीज, धन उतना नहीं और सब चीजें इतनी हानिकारक नहीं जितना प्रतिष्ठा है। सबको छोड़ कर सकते हैं, स्त्री को छोड़ करके हम लोग चले आए, धन संपत्ति को हम लोग छोड़ करके आए, प्रतिष्ठा नहीं जा रही। मानो दामन और चोला का संबंध है, साजी नहीं छूटती है, ये बिन भगवत कृपा से नहीं जा सकती, ये बड़ी कार्य। तो वही कह रहे हैं सब जाएगी, सब लोग प्रशंसा करने लगेंगे, प्रतिष्ठा करने लगेंगे। उसमें जो यदि खो गया बाबा मैं तो कुछ हो गया, तो वो छाती तान करके चलता, अब मैं सिद्ध भक्त हो गया, इतनी प्रशंसा मिल रही है, इतने लोग महान, आप तो गुरुदेव हैं, साक्षात भगवान हैं, उसका पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ता। और इसका नतीजा ये होता है जो डूब करके वो नरक में मिल जाता है, भजन तो नष्ट भी हुआ और कहाँ रसातल में पहुंच जाता है। इसलिए जब थोड़ा सा भजन करने लगे और कोई प्रतिष्ठा आए, रुपया पैसा मिले, लोग इज्जत करने लगे, समझो जी ये हमारा प्रधान शत्रु ये चीज़ है और नहीं तो उसी में डूब मरेगा। इसलिए इसको कहते हैं क्या, तरंग रंगीनी, इसकी तरंगे आती हैं और साधक भक्त को डुबा देती हैं उस तरंग में, इससे बचने की चेष्टा करनी चाहिए। आप लोग भी कुछ दिन अग्रसर होंगे कुछ तो कहेंगे वाह रामचंद्र जी तो वास्तव में एक भक्त आदमी है, संसार की परवाह नहीं है, ये तो वो कौन महात्मा, तुकाराम जी, घर बार की सूद नहीं, नौकरी में भी नहीं जाता, नौकरी चली जाए कोई बात नहीं, बस खंजड़ी बजाते रहते हैं, लोग इसकी प्रशंसा देने और वो रसातल में चला जाएगा। और जो भक्त इसके आने पर भी उससे बच करके चलने की चेष्टा करेगा, अपना भजन ठीक करता चलेगा, वो थोड़ा सा अग्रसर, ये भी भजन में बाधक है, तो इसको कहते हैं तरंग रंग, इससे भी बच करके जब चलता है तब आगे वो बढ़ता है। छह स्थितियों को हमने पार कर लिया। सच्चे साधकों के लिए कह रहे हैं जो भजन में ठीक ठीक अग्रसर होना चाहते हैं, उद्देश्य एक ठीक कर लिया, लाइट स्तंभ जीवन का उद्देश्य, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ, हमको भजन करना है और संसार की बातें जो क्रियाएं हैं उसको भी भक्ति के अनुकूल करके चल रहे हैं, परिवार भर को जो गृहस्थ हैं वो भी परिवार को साथ लेते हुए चल रहे हैं, अनुकूल लेकर के प्रतिकूलों का त्याग। उसमें असत्संग है, असत्संग माने क्या, जो भजन नहीं करते, असत व्यक्ति हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, उनका भी संग छोड़े नहीं तो भजन नहीं होगा। इसलिए जो जो भजन के प्रतिकूल है उसको छोड़ते हुए आगे बढ़े, चाहे गृहस्थ हो चाहे त्यागी। तो ये सब चीज़ों को जो बतलाया इनको तो साधक भक्त को जिसका लक्ष्य है ये कृष्ण प्रेम, हम ब्रज प्रेम पाएंगे, इसके अतिरिक्त कृष्ण देने पर भी हम नहीं लेंगे। यदि मुक्ति भी दे दिया, धन भी दे दिया, हमको जरूरत तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रारब्ध से वो आ रहा है, उसको भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, क्या जरूरत है आगे की, अभी उसको तो लेकर के जाना नहीं है। ऐसा विचार करके ये लोग सीधे एक उद्देश्य कर लेते हैं, हमको ये चीज की जरूरत है, ये साधन अवस्था में ही होगी। बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्थिर करता है, मैं जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण भक्त, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ठीक है कृष्ण का भक्त है, हम जीवों का स्वरूप में सब में आत्मा में ये है, अब फिर उसमें विचार करेंगे किस तरह का भक्त, किस तरह का भक्त, प्रहलाद ध्रुव महाराज की तरह, प्रहलाद महाराज की तरह, या हनुमान की तरह में तुम भक्त है। एक एक जीव का एक एक स्पेशल भक्ति है, जिसमें से पांच प्रकार की बतलाई गई, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। मधुर गोपियों का है, सख्य सखाओं का है, वात्सल्य यशोदा जी का, नंद बाबा का, और दास्य हनुमान का, और ये चारों सनंदन, सनातन, सनत कुमार इत्यादि, ये जो ऋषि लोग हैं इनका शांत प्रेम है, उस समुद्र में लहर नहीं है, वो ब्रह्म है निराकार, मैं उनका दास, बस इतना ही सेवा। हनुमान जी सेवा कर रहे हैं किस रूप में, वो प्रभु हैं मैं दास हूँ, उनके आसन पर बराबर नहीं बैठेंगे, सखा लोग कूद करके उनके आसन पर क्या उनके कंधे पर बैठ जाएं, उनके सिर पर पैर भी रख देंगे, गले में हिल मिल करके खाएंगे, जूठा और ये सब का विचार नहीं। और मैया, मैया उसे भी बढ़ करके ममता और स्नेह है, और उससे गोपियों का है, जब गुरु से दक्षिणा दीक्षा मिलती है, दीक्षा लेता है, उसी समय में सुनते सुनते भगवान की कथाओं को इनमें से कोई एक भाव को वो ठीक कर लेता है। ग्रेजुएट होने पर उसको एक लाइन पकड़ना पड़ता है एमए में, किसी खास एक विषय को जिसमें उसकी रुचि है उसको लेना पड़ता है, ऊपर से थोपा नहीं जाएगा, वो उसको जिसमें रुचि है, जिसमें वो अच्छा समझता है, सहज रूप में स्वाभाविक उसकी गति है, उस विषय को वो लेता है। एक विषय, दस विषय नहीं चलेगा, पीएचडी में भी, डीलिट में भी एक विषय पर अनुसंधान रहेगा। ऐसे हम इनमें से कोई एक के प्रति लोभ हो जाएगा, उनमें उसको स्थिर कर लिया जाए कि हमको तो इसी तरफ में अग्रसर, हम तो गोपियों जैसी भक्ति चाहते हैं, हम यशोदा मैया जैसी भक्ति चाहते हैं, और ऐसी भक्ति का उद्देश्य लेकर के स्थिर करके हमको अग्रसर होना पड़ेगा। उसके लिए जो साधन है अनुकूल उसको ग्रहण करेंगे, प्रतिकूल को सब दूर। एक मान लिया राधा कृष्ण का ब्रज में गोपियों के भावों को प्राप्त करना चाहिए, किंतु द्वारका के प्रति भी रुचि है और रुक्मिणी के प्रति भी आदर है, और वो भी उनको भी प्रसन्न करना चाहता है, नारायण भगवान वैकुंठ में उनको भी प्रसन्न करना चाहता है, तो वो बीच में लड़ झड़ा जाएगा, कृष्ण की भक्ति ब्रज में नहीं मिलेगी, बीच ही में अटक जाएगा। इसलिए शुद्ध रूप में श्रवण करके हमको अग्रसर होना है। संसारिक बातों को तो छोड़ ही दीजिए, ब्रह्मांड में जितनी लालसा और कामना बास इसको तो छोड़ दीजिए, परमार्थ में भी एक सीधा रास्ता में, उसमें भी कोई चाहेगा यशोदा मैया जैसे वात्सल्य हो, सखाओं जैसा कृष्ण से खेले भी, गोपियों जैसी हो, ये नहीं होगा। एक उसमें से जीव का स्वरूप एक ही, भजन करते 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 जब ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं, माया का पर्दा हट जाता है, अपने आप वो भाव हृदय में जागृत हो जाता है, और जब तक नहीं होता तब तक समझो कि हम अभी गड़बड़ में, हमारा भजन अभी शुद्ध नहीं चल रहा है। जब हमारे ये छह चीजों को जो बतलाया, खटर पटर मत करो, हमारा ध्यान चला जाता है। और भी चार प्रकार के अनर्थ हैं। अनर्थ माने क्या? अर्थ माने होता है इष्ट, इस माने जो मैं चाहता हूं, अनर्थ जो मैं नहीं चाहता हूं, वो जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जिसको हम नहीं चाहते हैं वो है अनर्थ। अर्थ माने धन संपत्ति, जिस चीज को, अर्थ माने रुपया पैसा ही नहीं, कोई भी जिस चीज को हम चाहते हैं वही हमारे लिए अर्थ। तो अर्थ हमारा क्या है? भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रेम के बदले जो चीज, दूसरी चीज है जो उसके विपरीत है, उसको कहते हैं अनर्थ। उसके लिए जो बाधक है, क्या बाधक है? वो तो छह चीजें बाधक थी, उसको बतलाया रंगनी तक, तरंग रंगनी तक। अब थोड़ा सा आगे चढ़े जो सूक्ष्म रूप में जो बाधाएं हैं, वो क्या बाधा कहते हैं कि वो चार प्रकार की बाधाएं हैं। पहला है दुष्कृति उत्थ, जो हमने पूर्व जन्म में इस जन्म में दुष्कृतियां, दुष्कृति जो खराब जो कार्य किए हैं, जिसको साधारण रूप में पाप कहते हैं, अनाचार कहते हैं, ये सब जो हमने की और उसका फल अभी आ रहा है, वो भजन में बाधा देता है। जैसे हमने पूर्व जन्म में किसी से हिंसा द्वेष की, उसे मारा, उन्हें जान से मार डाला, या जान से नहीं मार डाला, उसको अपमान किया बहुत बार, वो तो अपमान आएगा ना, जरूर आएगा, रिएक्शन आएगा। एक सूरत नाम के राजा थे, उन्होंने स्वर्ग पाने के लिए लाखों बकरे और भेड़ों की बलि दी, एक दो नहीं लाखों को। जब मृत्यु का समय आया तो स्वर्ग में जाने लगे, क्योंकि ये यज्ञ किया है ना, तो जितने जानवरों को मारा था वो एक लाइन में खड़े हो करके और फरसे लेकर के खड़े हो गए। पहले जो आपने मारा है इसका फल भोगते जाइए, तब जाइए वहां। अब बस खड़े हैं, बस मारे और गिर करके छटफट करें, लाखों की कतार देख करके एकदम कांपने लग गए। मरे तो नहीं, क्योंकि वो भोग का शरीर, ये तो मरी गया, फिर भोग का शरीर लिया, जैसे स्वप्न के आदमी को काटते हैं ना और उसमें दुख होता है, उठने पर होता, अरे तो कुछ हुआ नहीं किंतु दुख हुआ, शरीर कांपता है, उसमें भी दुख होता है जो शरीर में होता है, स्वप्न में भी किसी को कोई कष्ट होने पर। तो वैसे ही वो देख रहा है लाखों लोग खड़े हैं, बकरे वो सब और भेड़ और उनको मारने के लिए तैयार है, एकदम कांपने लग गए, गिर गए। नारद जी ने उनको दिखलाया अपने जोग बल से, देखो हिंसा का फल क्या है, स्वर्ग तो ना जाने कितने दिन पर अभी जाएगा, इसलिए कभी भी हिंसा इत्यादि नहीं करनी चाहिए। तो उसने जो हिंसा की, अब वो भजन करने के समय में वो आती है, कहते अरे हाय हाय मैंने तो कुछ किया नहीं, ये दुख क्यों आ रहा है, दुख आ रहा है यूं ही नहीं आ रहा है, तुमने निमंत्रण दिया है दुख का, पहले जो किया ना वो सब आ रहे हैं। इसलिए दुष्कृति, जो जो आपने खराब काम किया है, छोटा बड़ा अच्छा बुरा जो किया है, वो सब उसके फल आएंगे, ये दुष्कृति के द्वारा आए हुए ये फल हैं। इसलिए भजन में कभी कभी ये बाधा देते हैं, उस बाधा से यदि कोई घबरा गया का जिस ठाकुर जी को उठा करके और जमुना में फेंका है, पानी में फेंका, दर्द बेकार, हमारा बेटा मर गया, हमने इनको पुकारा हजार बार, कहा जी ठाकुर जी है सालग्राम जी, हमारे बेटे की रक्षा कर दिया, बेटा हमारा रक्षा नहीं हुआ, दर्द उठाओ बेकार, ये पत्थर शिला है, हम झूठ मूठ में इतने दिन में थे, फेंक दे, हो गया भजन, विचलित हो जाता है। इसलिए ये सब बाधाएं हैं, ये दुष्कृति उत्थ है। ऐसे मैंने एक संक्षेप में बताया, लाखों ऐसे क्रियाएं हो सकती हैं जो अभी हम करते हैं, इसलिए आगे के लिए नहीं करना चाहिए। अंडा खाना, गोश्त खाना, बड़े बड़े मांस के क्या कटलेट और क्या क्या बनते हैं, बड़े आराम से खाते हैं। आप मिस्र के हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, आपको बड़ी सुंदर सुंदर चीजें मिलेंगी, क्या मुर्गी का भी बच्चा अभी एकदम छोटा कोमल, उसको चाकू से काट करके नींबू दे करके लमन नमक दे करके चना जैसे खाता है ना कच्चा, ऐसे समझते नहीं, समझते हैं कि इनमें कोई दोष है, अंडे में कोई दोष नहीं समझते, सफेद आलू समझते हैं, किंतु इसका नतीजा इतना भोगना पड़ता है, जाते में पीस देगा वो काम, नहीं समझते हैं, कहते ये सब बेकार की बातें हैं, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, जो होगा सो देख ले, कोई चिंता नहीं, इसको पाप ही नहीं समझते हैं आदमी, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, पेट ही में उसको बच्चे को मार दिया जाता है, अरे अपने भोग को संभालो ना, संयत रहो, ये तो नहीं उसको हत्या करता है, ये तुम्हारे बस की तो बात है नहीं, बच्चा बना देना, तो ये सब अपराध होते हैं। अभी थोड़ी सी भजन में ना जब किस कारण से रुचि हो गई, किंतु ये सब बात पाप आता है ना, ये बात है, उस समय भी धैर्य धारण करके चलना चाहिए, भगवान का भजन किसी भी स्थिति में न छोड़े, तब तो इससे बच जाएंगे। ये दुष्कृति उत्थ और सुकृति उत्थ, हमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल भी आएगा। यदि दुख बिना बुलाया आता है तो सुख भी आएगा भाई, इसलिए संत पुरुष लोग, हम लोग उसके लिए चिंता नहीं करते। हम तो अभी संत नहीं हैं, किंतु हम लोग भी उसके लिए चिंता नहीं करते, जो कल कहाँ से भोजन मिलेगा इसके लिए चिंता नहीं, कपड़े कहाँ से आएंगे और सब क्या होगा। हमारा कर्म जो ये शरीर दिया है तो बचपन से लेकर के अंत तक ये जरूर, जैसे दुख आ रहा है बिना बुलाए वो भी आए, निश्चिंत होकर के वो भजन करते हैं, भगवान पर सब कुछ समर्पण कर देते हैं, जो होगा जो होना है वो तो होगा ही। इसलिए दुष्कृति उत्थ हुआ, अब सुकृति उत्थ, जो तुमने पुण्य के फल के कार्य किए हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ पुण्य का काम करता है, अन्यासी होता है। हमारी हिंदू संस्कृति ऐसी है, किसी को दान, गरीब आते हैं उनको दे दिया, कभी कभी उसे भगा भी देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, कभी मारपीट भी देते हैं। जब पुरुष लोग नहीं रहते तो यदि कोई भिखारी अतिथि आ जाता है तो महिलाएं बड़े प्रेम से उनको, और यदि उसने कह दिया जैसे मैं थोड़ा सा हाथ देखना जानता हूँ, तब तक कोई बात ही नहीं, नहीं? हम लोगों से बहुत बार लोग सब लोग पूछते हैं, महात्मा जी आप हाथ देखना जानते हैं, प्रणामी लेकर के पहले और तब वो पूछेंगे, बल्कि वो पूछते हैं। हम कहते भैया हम तो कुछ नहीं, ये सब नहीं जानते। हाँ हाँ, उसको उलट देना हम जानते हैं, विधि को हम लोग उलट देंगे, हरिनाम के द्वारा, तुम हरिनाम करो, तुम्हारा यदि बुरा दिन है वो सब ठीक हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं, किंतु तुम्हारा क्या होगा, क्या है, तुमने क्या किया, ये सब हम लोग नहीं जानने पर भी नहीं बतलाएंगे। हम लोग समझ जाते हैं जहाँ क्या किया है, एक आदमी को विष चढ़ा है तो समझेगा नहीं, ये सांप या बिच्छू ने काट दिया है या कुछ ऐसी बात है। यदि नाक से बलगम आ रहा है तो हम समझ जाएंगे नहीं, इसको कोड लगा है। तो वैसे संत पुरुष लोग जान जाते हैं जैसे पूर्व जन्म के क्या कर्म है, कैसे क्या है और इसका कैसे हो जाए, तभी इस झंझट में नहीं रहते। इसलिए सुकृति के द्वारा जो पुण्य है और पुण्य के द्वारा जो कर्म है उसका फल भी तो आएगा। क्या आप कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे और काफी रुपए पैसे आ रहे हैं, कुछ भी नहीं करते तभी आ रहा है, और टाटा बिरला के घर में जन्म हो गया, वहां पर कुछ भी नहीं करते हैं तब भी देखिए कितना संपत्ति। अभी हिंदुजा ब्रदर्स लोग हैं, मैं बॉम्बे में था तो सुना, वो हमको ले भी गए थे अपने घर में, तो उनका एक लड़का था, एक ही बड़े भाई का, और एक ऑस्ट्रेलियन लड़की पर फिदा हो गया, उससे प्रेम कर लिया और उसने इनकार कर दिया कि हम इंडियन से शादी नहीं करेंगे, ये कुछ श्यामला और वो थी गोरी, बस वो तो गोरा और सफेद का वो, बस उसने सुसाइड कर लिया, बीज खा लिया, मर गया। बड़ा तबाही उनके वंश में, परिवार में बड़े दुखी। अच्छा। उसी तरह से सुख भी आना होगा ना, सुख का जब भी हमने काम किया है तो जरूर आएगा, किंतु उसी सुख के और दुख के झमेले में पड़कर सुख आया और भूल गए। हिंदुजा के घर में जन्म हुआ और खूब सुखा रहा, भजन होने देगा? हमारे संत लोग बेवकूफ नहीं थे, जो बड़े बड़े राज्यों को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए आए। ये सब अतिरिक्त अर्थ, अतिरिक्त प्रतिष्ठा इत्यादि सभी चीज, यदि ये उसमें प्रभाव नहीं है कि उसको भगवान के भजन की सेवा में लगा दें तो उसको डुबा देगा। इसलिए सुकृति माने पुण्य जन्म, पूर्व जन्म के पुण्यों से जो वैभव प्राप्त हुआ है वो भी भजन में बाधा देगा जो आएगा तो अधिक। इसलिए जितनी जरूरत है उतने चीज हमारे संत लोग या हमारे पूर्व जन पूर्व के हमारे वंशज लोग, ऋषि महर्षि लोग या घर वाले गृहस्थ भी उतना ही संग्रह करते थे जितना जरूरत है। मधुमक्खी का छाता सारा वर्ष मधु फूलों से लिया, हम लोग तो मधु नहीं फूलों से ले सकते, बड़ी मुश्किल से लिया और छाता लाया, ये जाड़ों के दिन में बैठ करके आराम से मधु का पान करें। और एक नटखट बंदर आया और बंदर का भाई वो बानर नर ही आया, बहेलिया या बानर ही आया, और उसको तोड़ करके कपड़े में निचोड़ करके ऐसे दबाया, और लाखों मधुमक्खियां उसी के अंदर में मधु होकर के रस उनका निकल गया। इस तरह से हम लोगों की धन संपत्ति को भी ऐसा ना बनाए मधु को जैसा बान करके, नहीं तो ये हमारा प्राण भी ले लेगा। इसलिए कहते हैं कि सुकृति उत्थ, सुकृति से आने वाले जो सुख हैं आएंगे, किंतु उनको कैसे रखो, महाराज जनक की भांति, अम्बरीश महाराज की भांति, पांडवों की भांति, उसमें हमको मरना ना पड़े, उसका सदुपयोग करें। किस रूप में, परिवार का भरण पोषण तो करेंगे, ठाकुर जी की सेवा हो, संतों की सेवा हो, हमारा परमार्थ हो, इसके लिंक में किया जाए। कोई चीज भी मना नहीं है, कोई भी वस्तु भगवान का विरोधी नहीं है, धन भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसका व्यवहार ही दोष है, उसका सद्व्यवहार उसको ऊपर उठा देगा, और उसका दुर्व्यवहार करेंगे नीचे चलेंगे। एक चाकू है, उसे सेब काट लो, उसके छिलके उतार करके खाओ, सब्जी बना लो, और उसके सदुपयोग हैं। और यदि अपने छुरी को लिया और अपने या अपने मित्र के गले में घोंप दिया तो ये दुर्भाव, तुमको मरना पड़ेगा। इसलिए सब चीज का सद्व्यवहार होना चाहिए। साधारण लोग अर्थ तो कमाना जानते हैं किंतु उसका सद्व्यवहार नहीं करना जानते। हमारे गुरु जी कहते थे अर्थ कमाना सहज है किंतु उसका सदुपयोग ऐसा करना जो बंधन में न लाए, मरते समय उसी की चिंता करते करते मर जाएं, या कहीं खर्च हो गया, कहीं नष्ट हो गया तो उसी की चिंता में मर गए, इसकी क्या व्यवस्था होगी। एक आदमी ने करोड़ों रुपये कमाए और मरते समय चिंता, मैं क्या करूं, संतान तो है नहीं, मैं इसकी क्या व्यवस्था करूं, संतान भी है तो एकदम बदमाश। मथुरा में एक ऐसा ही परिवार है, एक ही एकलौता लड़का महाबदमाश, बिजनेस सारा है, वो बूढ़े हो गए देखते हैं, किंतु वो नहीं जाएगा, घर में पड़ा रहेगा, बदमाशी करेगा, पैसा मांगेगा, नहीं देंगे तो और उत्पात करेगा। तो अब कहते हैं कि लड़का क्यों हुआ ये, बल्कि नहीं होता या जन्म करके ही मर जाता तो अच्छा था, कभी बंदूक भी तान ऐसे मार देंगे यदि पैसा नहीं देंगे, कार खरीद दिया, अच्छा अच्छा लोग कार खरीद, उसकी कामनाएं नहीं कम होती। तो यह सुकृति उत्थव हुआ, इसलिए यदि है भी तो इसको सद्व्यवहार में लाया जाए, जो हमारा परमार्थिक भी कल्याण हो, आर्थिक भी कल्याण हो। ये दो हुआ। तीसरा हुआ अपराध उत्थ, वो सब तो पाप जैसे हैं, उसे रिहाई हो सकती है, किंतु अपराध वाला ये विषय बड़ा भयंकर है, बहुत भयंकर, ये चौपट कर देगा, इसलिए अपराध ना। अपराध कुछ प्रकार के हैं, एक होता है सेवा अपराध, आप लोग भक्ति राज्य में चल रहे हैं इसलिए बतला रहा है, सेवा अपराध, ठाकुर जी की सेवा करी करी बाल गोपाल या राधा कृष्ण या जैसे भी, सबके घर में कुछ जरूर होता होगा, बहुत से जगह अधिकांश मंदिर हैं, विशेष करके त्यागी लोगों के लिए, जो त्याग करके और संन्यास का बाना या ब्रह्मचारी का बाना पहन करके, त्यागी का रह करके घर बार माता पिता को छोड़ करके आए हैं, ऐसे लोगों के लिए अपराध बहुत भयंकर है, अपराध नहीं होने पाए। अपराध क्या है, सेवा अपराध। ठाकुर जी को घर में रखा, यहाँ हैं ये ठाकुर जी हैं, ये मूर्ति है या ठाकुर जी है या स्टैचू है, क्या चीज है ये, स्टैचू तो नहीं, स्टैचू में और मूर्ति में शिव विग्रह में क्या अंतर होता है, ये समझना चाहिए भक्त को जो भजन करता है, साधारण नहीं समझेंगे। मनोरंजन के लिए जो चीजें रख दी जाती है वो है स्टैचू के समान, पिताजी के स्टैचू, माताजी के स्टैचू, सुभाष चंद्र बोस की, जवाहरलाल नेहरू की, और अभी आ रहा था देखा राजेंद्र बाबू का वो स्टैचू कहीं रास्ते में लगा हुआ था, कहीं गांधी जी का अपना लोटा क्या सोटा हाँ वो लेकर के और चल रहे हैं ऐसे धोती पहने हुए, ये सब स्टैचू है, किसी का यहीं तक स्टैचू होता है। हम लोगों के वैष्णव धर्म में यहाँ तक का नहीं होता है, पूरा होना चाहिए, बैठा हो या खड़ा हो। तो ये शिव विग्रह पार करके चलते हैं। शिव विग्रह माने भगवान, प्रतिमा न हो, तुम ही साक्षात प्रजन्म। शालग्राम शिला जो है टुकड़ा, वो काला सा है, वो पत्थर नहीं है, जहाँ था उसे ठोकर मार दिया, गए तब तो जहन्नम में, देखने में पत्थर ही जैसा, किंतु शालग्राम है, उसके चिन्ह सब बतलाए गए हैं। ठाकुर जी को शालग्राम शिला को, राधा कृष्ण को यहाँ पर रख दिया, गुरु जी को भी रख दिया, और जूता चलते हुए लगाते हुए बड़े आराम से सिगरेट फूंकते हुए चले जा, भजन भी करते हैं। ये क्या हुआ, सेवा अपराध हुआ कि नहीं हुआ? एक पूज्य व्यक्ति आ जाए, कोई बड़ा अफसर आ जाए, या पिताजी आ जाए, उनके सामने सिगरेट पियेंगे और इनके सामने ये मूर्ति के सामने करेंगे, तो इसको ये समझिए कि आप स्टेचू समझ रहे हैं, तो इसलिए नहीं रखना ही अच्छा है। और यदि रखते हैं तो ठीक से रखिए, उसका पूजन कीजिए, सेवा अपराध नहीं हो। ठाकुर जी को यहाँ रखा और किसी ने कुछ गड़बड़ी किया, उसे एक थप्पड़ मारा, किसी को डांटना, किसी को अधिक प्रेम करना ठाकुर जी के सामने नहीं, क्यों? डांटने वाले फटकारने वाले प्रभु हैं, तो प्रभु शासन नहीं करते है, तुम शासन करेगा, तो इसका मतलब है जो वो पत्थर का है वो शासन नहीं कर सकता, वो कुछ उसमें प्रभाव नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। ये सब क्या हुआ, सेवा अपराध। और भी ऐसे 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। जो साधक उन्नति करना चाहता है, भजन में प्रवेश करना चाहता है, खूब अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। ठाकुर जी के सामने पैर पसार देना, कड़ी कड़ी बात बोलना, शोक करना, कोई कुछ हो गई बात, शोक कर रहा है, हाय हाय मैं तो मारी गई, मैं तो मारी गई, वो ठीक से विचार करके जो कुछ हो रहा कर रहे, हम उसके लिए शोक करते हैं, इसलिए यह सब सेवा अपराध होगा। किसी को दंड देना या किसी को अधिक कुछ, गुरु जी बैठे हैं, कोई वैष्णव बैठा है, गुरु जी बैठे हैं और कोई व्यक्ति आया, उसको कोई इसी से डांट रहा है, हैं? तुम मूर्ख है, तुमको ज्ञान नहीं, और गुरु जी वहां पर बैठे हैं, ये क्या हुआ, समझ रहे हैं ना? पिताजी बैठे हैं, उनके सामने दूसरों को शासन करके डांट रहे हैं, या मालिक बन करके कुछ दे रहे हैं, अरे तुम्हारा मालिक तो ये बैठा है, और उसके सामने उसको आदर नहीं करते, अवज्ञा करते हैं, तो ये विश्व ब्रह्मांड के जो प्रभु हैं, इनको स्टैचू समझ करके तुम ऐसा कर रहा है, इसलिए तुम सेवा करने का अधिकारी नहीं है। आज हो रहा है हरिजन सब भी मंदिर में घुस, क्या करेंगे, यही तो करेंगे और मरेंगे। पहले उस अधिकार पर आए, उनको समझे जी ठाकुर जी क्या हैं, विग्रह क्या है। अभी अभी आपको सुनाया, माधवेंद्रपुरी जी ने को सुनाया ना कथा, उन्होंने कहा जी हमको यहाँ से निकालो, हमारी ये सेवा करो, देखो तो हमारे कान में छेद है, हमको ये कुंडल नहीं बना सकता। अरे ठाकुर जी मांगने दे, अभी जयपुर में वो ठाकुर जी हैं और कुंडल भी हुआ वो है, पैदल साक्षी देने के लिए 1000 मील दौड़ करके गए, पीछे 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 साक्षी देने के लिए। कहते नहीं ये सब भाव भावुकताएं हैं, ये सब भक्ति का नहीं, गलत बात है, भक्त ऐसा नहीं मानता। इसलिए जिसको भक्ति करनी है, प्रेम करना है, तो ये ऐसा साधन करके चले, नहीं तो बीच में अटक जाएगा। अच्छा, एक तो हुआ सेवा अपराध, इसे बचे। एक होता है नाम अपराध, नाम करते हैं, नाम के प्रति अपराध मत करो। ये नाम अपराध क्या है, 10 है, अब इसको बतलाएंगे तो सारा चला जाएगा सब, इसलिए ये समझो, वैष्णव की निंदा मत करो, संतों की निंदा मत करो, गुरु जी की अवज्ञा मत करो, भगवान का नाम और सब साधन जितना है, काली दुर्गा का पूजा या और सदाचार, ये सब नाम के बराबर है, ऐसा मत समझो। नाम लेते हुए आलस्य मत करो, नाम में इतनी महिमा बतलाई गई, एक नाम करने से उसका संसार पूरा दूर हो जाता है और उसको सर्व सिद्धि हो जाती है। ये सब बेकार की बातें हैं, हुआ है कुछ रुचि बढ़ाने के लिए ऐसा कह दिया, जैसे कहते हैं ना ये घोड़ा तो आसमान में उड़ रहा, अरे घोड़ा कहीं आसमान में उड़ता है, अरे ये तो हनुमान जी जैसा वीर है, हनुमान जी जैसा वीर हो जाएगा, ये समुद्र को लांग, ये सचमुच में शेर है, शेर बब्बर तो ये सब तुलना मूलक के लिए ये शब्द आ गया। तो वैसे ही नाम की महिमा जो शास्त्रों में और भक्ति की महिमा दी गई है ये सब उतनी नहीं है। अरे उसमें ये है, सवेरा हो गया भोर हो गया कितना कितना मिनट,
50 मिनट 55 मिनट हो गया।
अच्छा तो ये प्रसंग थोड़ा सा बतला गया। तो अरुचिकर तो नहीं हो रहा है जिसको भक्ति की जरूरत है इन सब पर विचार करें, नहीं तो भजन में उन्नति नहीं होगी। केवल ऐसे ही बस कभी किया कभी नहीं किया, अष्ट माने उससे उस धारा से धारा प्रवाह रूप में नहीं होगा। इसलिए मैं ये सब बतला रहा हूँ कि हम लोग ठीक ठीक अपने गोल तक पहुँच सकें, भगवान के प्रेम को पाएं। जहाँ जहाँ कोई बाधा है उसके लिए ये सब शास्त्रकारों ने भजन करके देखा जी यहाँ पर ये नुक्स है, उसको दूर करने की आप लोग भी इसको चेष्टा करेंगे। ऐसे नमापराध शरीर में अंगता और ममता मैं और मेरापन का भाव मत रखो, इसके अंदर में है आत्मा, ये शरीर जाएगा अवश्य जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, विश्व की कोई भी शक्ति नहीं रोकेगा। हाँ भजन के प्रभाव से ये शरीर को छोड़ करके जो शरीर जो समय मिलेगा वो नहीं नष्ट होता, जैसे हनुमान जी का शरीर, नारद जी का शरीर, ध्रुव जी का और ऐसे से वो अदल बदल नहीं होगा, वो ऐसे इसी से बैकुंठ और यहीं जहाँ जहाँ भी जाना होगा वायु की गति से चारों तरफ उससे भी अधिक ऊंचाई, यहाँ तक बैकुंठ की गति इसी शरीर से हो जाती है, उसमें ध्वंस परिवर्तन कुछ नहीं होता। इसलिए नमापराध से दूर रहो। शास्त्रों में जितनी भी नाम की महिमाएं लिखी गई हैं वो एकदम पूर्ण सत्य बल्कि आंशिक रूप में लिखी गई, पूरा नहीं लिखा गया नाम का प्रभाव क्या है, इसलिए उस पर विश्वास पूर्ण रखो। जो शास्त्र में जो नाम की महिमा दी गई वो सब सत्य है। गुरु जी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, भूल करके भी उनको मनुष्य मत समझो। कृष्ण भी तो टट्टी जाते होंगे दिखलाने के लिए और रोते होंगे, उनको भूख लगती थी, चोरी भी करते थे और लोगों से लड़ते भी थे, पक्षपात भी करते थे, उनको साधारण मनुष्य मत समझो। वो ऐसा अभिनय कर रहे हैं, अभिनय करना यथार्थता एक नहीं है, इसलिए गुरु को ऐसा मत समझो। यद्यपि सब गुरु एक बराबर नहीं होते हैं, कुछ लोग निम्न अधिकारी के भी गुरु होते हैं जो कोई नाम का उपदेश दे देते हैं, सिद्धि अभी नहीं है, उनको भी मान लिया गया। जहाँ ये भगवान के तरफ में ले चल रहे हैं इसको भी भगवत स्वरूप ही मान लो, किंतु गुरु कौन है? नारद जी जैसे लोग गुरु, जिसके हाथ ऐसा रख दिया और जो कुछ है जाओ तुम्हारी सब सिद्धि हो, समस्त वेद की विद्याएं सबको आ जाए, तुमको कृष्ण प्रेम अभी हो जाए, वो कुछ उत्तम अधिकारी वैष्णव जो गुरु है वो अलग है। किंतु इस गुरु को भी जो थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं इनको भी सम्मान देना उचित है। कर्मी लोग भी अपने गुरु को सम्मान दें। तो यथार्थ जो नाम की दीक्षा और मंत्र देने वाले हैं इनके प्रति क्यों नहीं याद रहो? जो थोड़ा सी बढ़े हैं उनका भी हम कृतज्ञ हैं। किस भी तरह से हमारा मोड़ को उन्होंने भगवान की तरफ में मोड़ा है और जो शिक्षाएं दे रहे हैं जो वहां तक ले जा रहे हैं ये सबको सम्मान यथा उचित देना चाहिए। ये एक हुआ। और एक होता है वैष्णव अपराध, नहीं विशेष रूप से है वैष्णव अपराध है तो उसमें तो भी, और एक है भगवत अपराध, भगवान के प्रति अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध। एक होता है नाम के प्रति, एक सेवा, ये चार प्रधान है। कभी समय मिलने पर इसको विशेष रूप से बतलाऊंगा। अब इसमें जो सेवा अपराध है ये हरिनाम करने से, प्रार्थना करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से ये तो सहज में दूर हो जाएगा, ये अत्यंत अपराध नहीं है, ये थोड़े से प्रयास से इसे हम बच भी सकते हैं और हरिनाम के द्वारा स्तव स्तुति के द्वारा ये सब चीजें दूर हो जाएगी। वैष्णवों का अपराध बड़ा भयंकर है। वैष्णव कौन है? जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया है, नाम को ही स्वयं भगवान समझते हैं, कुछ तत्व ज्ञान भी उनको हो गया है, ये जड़ है ये चेतन है, और कुछ संबंध ज्ञान भी हो चुका है। संबंध ज्ञान माने क्या? मैं दास हूँ वो प्रभु हैं, कौन किस्म के हम दास हैं, कौन तरह के प्रभु हैं, ये भी थोड़ा सा ज्ञान हो गया, भक्ति राज्य में कुछ प्रवेश कर सकते। और तीसरे जो हैं वो मध्यम अधिकारी में आ गए हैं, ये मध्यम अधिकारी का पहला, मध्यम अधिकारी फिर और उसे उत्तम अधिकारी, उसमें भी उत्तम अधिकारी में हंस परमहंस कुटीचक बहुचक बहुत प्रकार के हैं, बहुत बहुत सूक्ष्म विचार है। सुखदेव गोस्वामी जी भागवत हैं किंतु नारद जी उनसे परम भागवत हैं, इसका सब विचार है, सब सभी बराबर नहीं है। तुलसी के पत्ते सब बराबर होने पर भी वैष्णव सब एक बराबर नहीं है, और सबको लिपा पोती कर करके सब पापड़ बेल दिया एक साथ में, सभी एक हैं, अपराध होगा। एक वेश्या को एक माँ को दोनों को आया, दोनों तो महिलाएं हैं, दोनों के एक सिंहासन पर, दोनों का जो आदर करते हैं, जो पार्थक्य नहीं समझते हैं, तो उनका ये माता के प्रति अपराध हो जाता है। इसी तरह से वैष्णवों को के प्रति कोई अपराध ना हो, उसके लिए बतलाते हैं किसी वैष्णव पर तनिक भी कोई प्रहार मत करो, विशेष करके जिनको संबंध ज्ञान हो गया है, हरिनाम करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान पर आश्रित हैं, उनका कभी भी प्रहार मत करो, उनकी कभी भूल करके निंदा मत करो, किसी प्रकार से निंदा मत करो वैष्णव। यदि दोष भी है तो दोष मत देखो, क्यों? भगवान ने कहा पिछे सुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तब्ध सम्यक व्यवस्थे हिंसा। वो कुछ दिनों के ही बाद में ठीक हो जाए, क्योंकि वो विष का जो दांत था वो तोड़ दिया गया है, अब वो पाप नहीं करना चाहता, हो गया है वो, उसके लिए अनुताप करके उसी से वो शुद्ध हो जाएगा। उसके लिए तुम निंदा मत करो, तुम उसके गुणाइयों को देखो, गुणों को देखो, और नहीं तो उसे बच करके चलो, निंदा मत करने जाओ। जो बुरे आदमी हैं उनकी भी निंदा मत करो, क्योंकि बुरा निंदा करने से क्या होता, उनकी बुराइयां हमारे अंदर में चली आएगी, इसलिए खबरदार कभी किसी व्यक्ति की नहीं। वैष्णव की तो बात दूर है, इसलिए मत करो, और खबरदार द्वेष मत करो, उनका अहित करने की चेष्टा से उनके प्रति जो व्यवहार होता है उसको कहते हैं द्वेष, द्वेष मत करो, और उसका अनादर मत करो। अनादर माने के आदर तो नहीं करते हैं, अनादर भी करते हैं, आदर नहीं करते हैं ये अनादर, ऐसा नहीं, आदर करना पड़ा, दे करके उठ करके खड़े हो, जब आ रहे हो दे करके खड़े पधारिए आइए, जब जा रहे हो उनके दो कदम उनके पीछे चल करके चलना चाहिए, पानी पिएंगे पानी लेकर के रख दिया, आदर करो, अनादर वही करेंगे तभी जाएगा, इसलिए अनादर मत करो। निंदा और मारपीट और ये सब चीजें तो ये अलग रहे, अनादर भी मत करो। कुछ आदमी तटस्थ रहते हैं, निंदा भी नहीं करेंगे आदर भी नहीं करेंगे, हम तटस्थ रहे, तटस्थ रहना भी तुम्हारे लिए खतरनाक है वैष्णव के प्रति, ठाकुर जी और भगवान के प्रति तटस्थ नहीं रहना है, ये निर्विशेषवादी अद्वैतवादी होते हैं, जिसको हमारे आचार्यों ने खंडन करके निरस्त किया है, तटस्थ कभी नहीं रहना चाहिए भक्ति से। और क्रोध मत करो वैष्णव पर, खबरदार मत करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्रोध किसी पर मत करो, किंतु वैष्णव यदि हो गया तो भी क्षमा है, उसका तो निराकरण हो जाए, किंतु वैष्णव पर जो हरिनाम करने वाले हैं, शुद्ध रूप में भगवान पर आश्रित हैं, जो कुछ बढ़ चुके हैं, ऐसे वैष्णव पर खबरदार क्रोध मत करो। और वैष्णव के मिलने पर यदि आनंद नहीं होता, हर्ष नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होता, ये भी अपराध है, और की तो बात क्या, समझ रहे हैं ना, वैष्णव को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाए ये बात ठीक है, और यदि देख करके आ रहे हैं बस तो ही ऐसा होगा ना। ये जो है छह प्रकार के वैष्णव अपराध, इससे भी बचो, अनजान में भी होगा तो गड़बड़ करेगा, आग भी देंगे तो उसमें जले जलाएगा, बहुत भीषण चीज है, इसलिए प्रार्थना कीजिए वैष्णव के प्रति अपराध, क्यों भगवान की महत्ता, नाम की महिमा, भगवान की सेवा की बातें, उनकी कथाएं ये वैष्णव लोग ही तो सुनाते हैं, और उनके प्रति ऐसा होगा यदि भूल से भी हुआ, भूल से तो नहीं, आजकल भूल से नहीं होता, जान बुझ कर कर, ये हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी है, भक्तों की कोई पार्टी नहीं, नारद जी कौन से पार्टी में है, सुखदेव गोस्वामी कौन पार्टी में है? हम लोगों की पार्टी है, यही सब हमारी पार्टी है। भक्त जहाँ पर हरिनाम करते हैं यहाँ हरिनाम होता है, जो हरिनाम करता है सतगुरु का आश्रय करता है, वो सभी लोग हमारी पार्टी के हैं। हमारा वंश बढ़े है? वो उस दल के हैं और हमारे गुरुजी तो इस दल के हैं। कभी उनको यहाँ पर मत आने देना, उनका नाम हम नहीं सुनना चाहते हैं। अरे वो बहुत जरा उन्नत हैं, उन्नत से क्या है, हमको तो पार्टीबाजी अपना दल बढ़ाना है, भक्ति का नहीं, ये गड़बड़ है। इन सबको देख करके विचार करके चलना। आज जरा समय हो गया, डॉक्टरों ने हमको निषेध किया है, हमको बार बार निषेध कर रहे हैं, इसलिए आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल इसके बाद में कुछ करना होगा। आप लोग उत्साह के साथ में इन चीज़ों को धारण करेंगे तब भक्ति में अग्रसर हो सकेंगे, और नहीं तो एक रिक्रिएशन मनोविनोद के समान हम चल रहे हैं। खूब गंभीरता से लेकर के चलेंगे, भजन में उन्नति होगी। शिक्षा गुरु का यही कर्तव्य है, सबको उचित शिक्षा देना, उनका किसी के ऊपर में पार्टी फीलिंग्स इत्यादि नहीं। इस प्रकार से चल करके हम लोग भजन, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। उस गुरु का शिष्य है, मैं उस गुरु का शिष्य है, ये आज तक कभी नहीं हुआ था, अब होने लगा। पहले लोग था जो अपने शिष्य को आदर नहीं देते थे, दूसरे के शिष्य को अधिक आदर देते थे। जैसे अपना बेटा आया, दूसरे का एक बेटा आया, अपने बेटे को रख करके दूसरे के बेटे को छाती से लगा देते, ये है प्रेम ना? ऐसा होना चाहिए। ऐसा उदारता नहीं आएगी तो वैष्णव धर्म नहीं रह सकता। ये वैष्णव धर्म में ये कैंसर और टीबी घुस रही है, भगवान इसे रक्षा हमारी कर सके। आज यही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। यदि कोई कड़ी बात हमारे मुख से निकल गई है तो आप लोग इसके लिए क्षमा करें।
जय राम।